لما قال لي ان حزب الله عليكم فجعل لي فان حزب الله فجعل لي من اوليائك فان اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات الله عليه وسلم. امام سجاد علیہ السلام کے نو میں سے دعا کا ایک حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. محترم اور معزز برادران بزرگان اہم شخصیات اور میرے سے عبادت کے سیٹ اپ سے تعلق رکھنے والے برادران اور وہ سارے لوگ کے جو آج ہفتہ عبادت کی مناسبت سے غور و فکر اور تدبر کرنے والے اس محفل کے اندر موجود ہیں, میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے اس کی بدولت ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم یہ بیٹھ کر اکرم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہونے والے اس پروگرام میں غور و فکر اور تدبر کا فریضہ جو ہے وہ انجام دے سکے. ہم نے ایک روایت میں پڑھا کہ وہ محفل جس میں مومنین بیٹھ کر غور و فکر اور تدبر کا کام کرتے ہیں وہ اہل آسمان کے لیے اس طرح ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستاروں برا آسمان. تو یقیناً اگر ان شاء اللہ خدا ہمیں توفیق دے تو ہماری یہ محفل ایک ایسی ہی محفل ثابت ہو جو ملت کے لیے غور و فکر کرنے والی, تدبر کرنے والی, مشکلات سے راہوں کو نکالنے والی اور اس کے اپنے وظیفے کی شناخت کو پھر اس وظیفے کے اوپر آمد درآمد کی طرف لے کے جانے والی. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر آپ ضرور بات سے اپنی محفل کو مانگ کریں. چونکہ شاید یہ اتنی جلدی امکان نہ ہو کہ مجھے دوبارہ موقع ملے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور شاید اس طرح کی آپ کی گیدرنگ جو ہے اس کا بھی امکان اتنا آسان نہیں ہے, اور اس کے بعد بہت اہم ہے ان شاء اللہ جو آپ سے بات کرنی ہے. تو میں ایک موقع سے ہوں آپ سے کہ اگر اپنے ٹیلی فون جو ہے وہ جسٹ سائلنٹ کر دیں گے تو ہمیں اپنی بات کو کنٹینیو کرنے میں آسانی ہوگی اور تھوڑی ڈسٹربنس جو ہے وہ ہی ہوگی. ایک چھوٹی زحمت کرتے ہوئے اپنے ٹیلی فون کو تمام دوست جو ہے تھوڑی دیر کے لیے زحمت ہوگی, لیکن ہمارے اس محفل میں بیٹھنے کا جو حق ہے وہ ان شاء اللہ ادا ہو جائے گا. تو ٹیلی فون کو تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر دیں, میں ان شاء اللہ اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں. ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیے گا محمد. دیکھیے تشیعوں کی اپنی شناخت بھی ہے اور دشمنان تشیعوں کی شناخت بھی ہے شیعیت کے بارے میں. یہ جو ابھی خاکے بنے اور یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے حوالے سے مختلف ایفرٹس کی گئی اور نعوذ باللہ من ذالک کی فلمیں بنائی گئیں جس میں جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس اور بابرکت ذات کا خوبصورت چہرے کو مسخ کرنا جو ہے وہ مقصود تھا, وہاں اس کے علاوہ کچھ اور مقاصد بھی دکھاتے تھے, اور ان میں سے جو بڑا مقصد تھا اور ان میں سے جو بڑا اہم مقصد تھا اور ان میں سے جو بڑا نمایاں مقصد تھا وہ یہ مقصد تھا کہ دیکھیں کہ جب ہم پیغمبر کی توہین کرتے ہیں, یہ بڑا اہم ہے, جب ہم پیغمبر کی توہین کرتے ہیں تو پوری امت کے اندر ہمارے پاس سٹیٹسٹک جمع کرنے کا کوئی میکنزم نہیں ہے, ہمارے پاس جمع آوری معلومات کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی غیرت اور حمیت کی بنیاد پر پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہیں, استعمار امریکہ اور اس کے حوالیوں کے ساتھ نہیں کھڑے. اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. بس انہوں نے ایک ایفرٹ کی, ایک جرائم کی, ایک جرم کیا, اور اس جرم کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر سے جو مزاحمت ہوئی اس میں انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی حرمت کے لیے سب سے پہلے, اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں, سب سے پہلے کوئی مکتب میدان کے اندر نکلا ہے تو وہ مکتب مکتب اہل بیت ہے. سب سے پہلے جس مکتب نے اس غم و غصے کو شناخت عطا کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا مجرم ٹیری جونز نہیں ہے, اس کا مجرم کوئی ایک ڈائریکٹر نہیں ہے, اس کا مجرم کوئی ایک فرد نہیں ہے, بلکہ اس کا مجرم وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو مینج کرتا ہے, یعنی امریکہ, تو وہ بھی الحمدللہ مکتب اہل بیت کو یہ شرف ملا ہے. لیکن میں اس سے بھی بڑی بات کروں کہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ناموس رسالت پر سب سے پہلے موومنٹ بھی کی اور سب سے پہلے شہید بھی دیا, شہید علی رضا تقی کی. یہ بڑا واقعی ایک شرف ہے. اور پوری دنیا میں جب ہم نے انالیسس کیا تو پتا لگا کہ صرف ایک مکتب ہے جنہوں نے اس پہ مظاہرے نہیں کیے, صرف ایک کنٹری ہے جس میں اس کے اوپر پروٹیسٹ نہیں ہونے دیا, اور صرف ایک ریاست ہے جس نے حکومتی سطح پر اس موضوع پر کوئی رد عمل نہیں دیا. یوں پوری دنیا کے لیے واضح ہو گیا وہ کون ہے جو دنیا کے اندر عالمی استعمار کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ کون ہے جو حرمت پیغمبر پر کٹ مارنے کے لیے تیار ہے لیکن اس پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے آمادہ نہیں. وہ ملک یقیناً آپ کو پتا ہوگا جہاں ایسا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا ہے, جہاں کوئی کنڈمنیشن نہیں آئی ہے, جہاں زبانی مذمت بھی نہیں کی گئی ہے, اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کون ہے جو اسلام کے نام پر دنیا میں افریقہ کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. چونکہ پاکستان کی طرف آنا ہے, پاکستان میں تشہیروں کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کر رہی ہیں, کچھ تازہ ڈیولپمنٹس آپ سے شیئر کر رہی ہیں, تو انشاءاللہ ایک بار پھر درود سے اس محفل کو موجود. میں آپ زبان سے ایک سوال کرتا ہوں, کبھی آپ کو زبان نے یہ سوچا, ابھی چونکہ ٹیلی فون آپ ہی ہوئے اس کے بعد اگر یہ روز بھی اپنا ٹیلی فون کر, کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھی مکتب اہل بیت کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ آپ نے یہ ڈاکومنٹری دیکھی, اور بالخصوص پاکستان کے اندر بھی مکتب اہل بیت کو نشانہ بنایا جاتا ہے, آخر وجہ کیا ہے, آخر مسئلہ کیا ہے, آخر ایشو کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. یہ درست ہے, ہماری آمادگی درست ہے, ہمارا پیغمبر کے ساتھ اور ان کی اہل بیت کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ درست ہے, یہ درست ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب میسم تمار کے ماننے والے ہیں, یہ درست ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے جناب میسم تمار اس درخت کو ہر روز پانی دیتے ہیں کہ تب یہ درخت بڑا ہو اور علی کی ولایت کے جرم میں علی کے اس نوکر کو پھانسی دی جائے, ہم بھی پاکستان کے اندر یہ فخر کرتے ہیں کہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے کے جرم میں اگر ہمیں شہید کیا جائے, ہم ہر روز اس کے لیے آمادہ ہیں کہ ہم میدان عمل میں آئیں, نکلیں اور اسلام میں اپنی جان جو ہے وہ پیش کریں, اس کے لیے آمادہ ہیں. لیکن بالآخر یہ سوچنے کی ضرورت تو ہے دشمن کو ہم سے خوف کیا ہے, آخر پرابلم کیا ہے, ایشو کیا ہے, کیوں تشیع کو نشانہ بناتے ہیں؟ تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بڑا فلسفیانہ جواب دوں, میں چاہتا ایک دو اور دو چار والا جواب دوں, اور یہ جواب انشاءاللہ پرانی واقعی کی روشنی میں بھی آپ کے لیے کلیئر ہوگا. یہ عہد کس امام کا عہد ہے؟ منتقم آل محمد کا عہد, یہ حاضر آخر کا عہد. اور بالکل ایسے جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں اس وقت کا فرعون پورے طور پر یہ متوجہ تھا کہ یہ وہ ملت ہے جس ملت میں موسیٰ کا ظہور ہونا ہے, بس اس نے وہ تمام جرائم کیے, اس نے وہ تمام جنایتیں کی, اس نے وہ تمام مظالم کیے, اس نے لوگوں کو قتل کیا, اس نے فقط عورتوں کو زندہ رہنے دیا, اس نے نسلوں کی کشی کی, لیکن اس نے یہ تمام ایفرٹس کی کہ کسی طریقے سے وہ موسیٰ کے ظہور کو روک سکے تاکہ وہ موسیٰ نہ آئے جو اس سے اقتدار بھی چھینے, جو اس سے سلطنت بھی چھینے, جو اس کا سٹیٹس کو بھی ختم کرے, اور جو حکومت کو الہی اقدار کے مطابق چلائے. آج کے دور کے اندر بھی یہی پرابلم ہے, دشمن کو یہ پتا ہے, ہمیں پتا ہو یا نہ پتا ہو, دشمن کو یہ اندازہ ہے کہ اگر کوئی مکتب دنیا کے اندر ہے, اگر کوئی ملت دنیا کے اندر ہے جو دنیا کے سٹیٹس کو چینج کرنے کی بات کرتی ہے, تو دنیا کو متبادل نظام دینے کی بات کرتی ہے, جو دنیا کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم رکھتی ہے, تو الحمدللہ ہم پورے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سسٹم متبادل ہے تو وہ بھی مکتب اہل بیت کے پاس موجود ہے, دنیا میں کوئی متبادل نظام اگر کوئی موجود ہے تو وہ بھی مکتب اہل بیت کے پاس موجود ہے, دنیا میں کوئی متبادل رہبریت موجود ہے تو وہ بھی مکتب اہل بیت کے پاس موجود ہے. بس وہ جن کے ہاتھوں میں دنیا کا اختیار ہے, وہ جن کے ہاتھوں میں دنیا کی قدرت ہے, وہ جن کے ہاتھوں میں دنیا کا کنٹرول ہے, کسی طور نہیں چاہیں گے کہ یہ سٹیٹس کو ختم ہو, اور انہیں یہ اندازہ ہے کہ اس آخری ہادی کا ظہور ہونا ہے تو اس کی اس ملت کی وجہ سے, اس کی اس ملت نے جس نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, جو اس کی حامی و ناصر بنے گی, جو اس کے آخری انقلاب کی سپاہ بنے گی جسے سپاہ امام زمان کہتے ہیں, ان کی یہ نظر ہے. اگر کوئی سپاہ امام زمان ہے تو وہ مکتب اہل بیت ہے, اور اگر کوئی سپاہ امام زمان بن سکتی ہے تو وہ یہی مکتب اہل بیت بن سکتا ہے. بس ہمارا دشمن لوکل نہیں ہے, چونکہ شیعہ لوکل نہیں ہوتا, شیعہ جہانی ہے, इसीलिए हमारे दुश्मन भी लोकल नहीं है, हमारा दुश्मन भी जहानी है। लिहाजा वो वसाइल जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वसाइल भी आलमी है, वो वसाइल भी बैन अल-अक़वामी है। बस पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर जो जंग हम लड़ रहे हैं ये कोई मकामी जंग नहीं है, ये बात आप जरूर समझिए, मकामी जंग नहीं है ये, फकत मनतई जंग नहीं है ये, फकत इस इलाके की जंग नहीं है, ये एक आलमी जंग है जिस जंग का एक बैटल फील्ड जो है वो पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर बनाया गया। मैं चल इस पे चल चीजें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है जरा गौर कीजिए। दुनिया में ईरान के बाद सबसे बड़ी शिया आबादी अगर किसी मुल्क के अंदर है तो वो किस मुल्क के अंदर है? पाकिस्तान के अंदर। शिया आबादी कितना बड़ा चेंज लेके आती है, आए जरा दुनिया के ऊपर निगाह दौड़ाए। दुनिया बजाय दो ताकत के दो ईमानों के अंदर मुंतसिल है, एक वो के जिन्हें अमेरिका और उसकी हवारी कहते हैं, एक वो जो उसके मतलब पाबंद खड़े। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देख लें कि अगर अमेरिका और उसके हवारियों के मध्य मुकाबल कोई रहबरीयत खड़ी है तो वो मकतबे अहले बैत की रहबरीयत खड़ी है, और जहां जहां उन्होंने ताकत जुल्म और जबर के बलबोते पर मकतबे अहले बैत को दबाने की कोशिश की है वहां वहां उन्हें आलमी सतह पर शिकस्त फाश हुई। वो ये समझते थे हमारे पास कुछ चीजें हैं, आप भी गौर करें, आप टेक्नोलॉजी में उनके मुकाबले में नहीं, आप जाहिरी इस्तेदार में उनके मुकाबले में नहीं लड़े, आप जाहिरी ताकत और कुव्वत के जो पैमाने हैं उसमें भी उनके मुकाबले में नहीं खड़े, लेकिन जब आप मुकाबला करते हैं इसराइल के साथ, जब आपका मकसद मुकाबले में आता है इसराइल के साथ, तो क्या तब्दीली नजर आती है? वो इसराइल जो 4 घंटों में 4 अरब ममालिक को शिकस्त देता है, वो इसराइल जो मिस्र से सहरा सीना लेता है, जो उर्दन से उर्दन का मगरबी किनारा लेता है, जो शाम से बोलान की पहाड़ियां लेता है, जो लबनान से जनूबी लबनान देता है, 4 घंटों के अंदर वही इसराइल जिसने बैत मगर 4 कंट्रीज को शिकस्त दी है, वही इसराइल जब हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन के मुकाबले में आता है जिनके पास ना फौज है, जिनके पास ना टैंक्स है, जिनके पास ना एयरफोर्स है, जिनके पास ना नेवल फोर्स है, वही इसराइल जब इनके मध्य मुकाबला आता है तो बदतरीन शिकस्त से दुचार होता है। कि आलमी जरीदे ये लिखते हैं कि इसराइल इस तरीके से लबनान से भाग रहा था जैसे कुत्ते की दुम उसकी टांगों में उलझ गई हो और वो फरार पर मजबूर। ये फतह किसकी बुनियाद पर हुई है, वो क्या है जिसकी वजह से आपको ये फतह हासिल हुई है? गोल्डस्टोन रिपोर्ट जो खुद इसराइली जज ने मुरतब की उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा, हमें ये मान लेना चाहिए कि हम अस्करी तौर पर भी हिज़्बुल्लाह से शिकस्त हुई है, हमें सकाफी तौर पर भी हिज़्बुल्लाह से शिकस्त हुई है, हमें समाजी तौर पर भी हिज़्बुल्लाह से शिकस्त हुई है। कहा कि जंग के हर मैदान में हिज़्बुल्लाह ने हमें शिकस्त फाश से दोचार किया, ये खुद जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई थी। आखिर क्या है आपके पास, वो कौन सी कुव्वत है आपके पास जिसकी वजह से तमाम जाहिरी ताकतें एक तरफ होकर भी शिकस्त पजीर होती हैं और आप बज़ाहिर तना होकर भी ताकतवर और कुदरतमंद रहते हैं? आए और आका हसन नसरुल्लाह से पूछते हैं और पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, आगा ये कहते हैं हमारे मोर्चों के अंदर असलहा कम था, हमारे मोर्चों के अंदर टेक्नोलॉजी का तो फुकदान था, हमारे मोर्चों के अंदर वो वाली चीजें तो मौजूद नहीं थी। आए और आज वहां को म्यूजियम देखें जो उन्होंने दिखाने के लिए लगाए हैं कि हमारे मोर्चों में असलहा क्या था, हमारे मोर्चों का असल वेपन क्या था जिसने उनको शिकस्त दी है। तो जब हमने जाकर वहां देखा तो कहीं हमें मनाजात की किताबें नजर आई, कहीं हमें पुराने बाग नजर आए, कहीं हमें सिजदागाह नजर आई, और कहीं जब हमें बताया गया तो कहा गया था हमारे पास दो ही तो चीजें थी, एक पुराना मनाजात और दूसरी आजादारी से मिलकर शहदा। ये चीजें थी उन्होंने दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, लबनान में कितने शिया होंगे? पूरे लबनान की आबादी जो है करीब 40 लाख, अगर उसका 50% निकाले तो 20 लाख शिया। 20 लाख शियों ने वक्त की आमिर हुक्मरानों को बदतरीन शिकस्त दी है। पाकिस्तान के अंदर कितने शिये हैं? पाकिस्तान के अंदर कम से कम जो सेंसस है, मतलब अगर हम अपनी बात नहीं करें CIA फैक्ट शीट की बात करें जो उन्होंने जारी किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में मकतबे अहले बैत के परवानों की तादाद करीब 5 करोड़। दुनिया के 100 मुल्कों की इंफरादी आबादी से ज्यादा आबादी सिर्फ मकतबे अहले बैत की पाकिस्तान के अंदर, यह है हमारा कल्चर। लेकिन वो क्या रहा है? वो ये रहा, ये तो एक वाक्य हुआ ना भी आखिरी, इस आखिरी वाक्य से तकरीबन 10 दिन पहले एक और वाक्य हुआ है जिस वाक्य के एक शहीद शायद आपके इलाके में दफन, सानिया बस्तों और मस्तों में एक सीरीज है एक सारे आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बताएं आप इंफॉर्म है वहां कितना जुल्म हुआ है कि मस्तों में गाड़ी जल गई है, शोहदा के लाशें जो है वो जल गई सोख्त हो गई। पाकिस्तान में कितने मुजाहिर हैं, कितनी हकूमत से बोली है, कितने गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई रद्दे वाला है। अच्छा मैं आपसे मजीद पूछता हूँ, वहां इस्लामाबाद में इनके जनाजे हुए हैं, क्वेटा में इनके हुए हैं, क्या इन तमाम इलाकों में कोई सियासी शख्सियत दी, किसी ने स्टेटमेंट दी? यानी कैफियत ये हो गई है कि अगर किसी मोहल्ले का एक बजाय थर्ड क्लास आदमी भी अगर मर जाए तो उसके मरने पर मकामी एमएनए भी जाता है, मकामी एमपीए भी जाता है, मकामी काउंसलर भी जाते हैं। हम इतने डीवैल्यू हो गए हैं, हम इतने पे कदर हो गए हैं, हमारे इतनी इज्जत जो है वो नीचे चली गई है कि 60-60 जनाजे 50-50 जनाजे आपके एक सरजमीन पर रखे होते हैं, आपके एक एक जगह पर उठाए जाते हैं, ना कोई एमएनए आता है, ना कोई एमपी आता है, ना कोई हुकूमत स्टेटमेंट देती है, ना पुलिस एक्शन में आती है, ना फौज और इदारे हरकत में आते हैं। 4.5 साल आपके पारा चनार का मुआसरा किया जाता है, 4.5 साल ना वहां गिजा है और ना वहां दवा है, ना वहां खुराक है, ना वहां आने जाने के रस्ते है। अपने ही मुल्क में वो लोग अजनबी है, वो अपने ही मुल्क के अंदर नहीं आ सकते, वो अपने ही कैपिटल में नहीं आ सकते। 4.5 साल उनका मुआसरा किया जाता है, रस्तों में मकतबे अहले बैत की बुनियाद पर शिनाख्ती कार्ड देकर तुम्हारा नाम अली है नीचे आओ, तुम्हारा नाम हुसैन है नीचे आओ। अली और हुसैन के नाम पे उनकी जान हमारी लाखों जाने कुर्बान, लेकिन अली और हुसैन के नाम पे हमारी जाने कुर्बान की जाए ना कोई स्टेटमेंट आए, ना कोई बयान आए। क्या इतने प्यारश हो गए हम, क्या इतने टिकारी हो गए हम? सच है, अपने आप से पूछे क्या ये दुरुस्त नहीं है? क्यों? इसलिए कि उन्हें यह अंदाजा है कि शिया सियासी तौर पर गुलाम, जब तक शियत सियासी गुलामी से नहीं निकलती शियत इज्जत का सफर शुरू ही नहीं कर सकती। क्यों? उन्हें पता है कि बजाहिर कहते हैं मैं मकतबे अहले बैत से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन अभी अभी हमें महसूस नहीं करना इस बात को समझना है, लेकिन कभी भी इनका वोट मकतब की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं हुआ। इनके वोट के मालिक कहीं एएनपी है, कहीं एमपीएम है, कहीं पीपल्स पार्टी है, कहीं मुस्लिम लीग नून है, कहीं मुस्लिम लीग काफ है। वो आपके वोट का डिसीजन करते हैं, हम अपने वोट का डिसीजन नहीं करते, हम अपनी सलाहियत का भी डिसीजन नहीं करते। उन्हें ये यकीन है आइंदा भी हमने इसी डिस्ट्रीब्यूशन में रहना है, उन्हें ये कंफर्म है आइंदा भी हमने इसी सेटअप के अंदर इसी तरीके से एग्जिस्ट करना है, चूंकि इसी तरह एग्जिस्ट करना है। आपकी आवाज नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है। आपका जो वोट है वो कभी नून की जेब का वोट है, कभी काफ की जेब का वोट है, आप उनकी निगाह में कोई वैल्यू नहीं रखते। बस ये सफर जारी रहेगा जो बजाय जिद्दत का सफर, क्या इसे ट्रेन किया जा सकता है हिकमत के साथ? मैं नहीं कहता हम पार्टी के मुकाबले में आ जाए, मैं इसकी वजह कर रहा हूं। पाकिस्तान में 3 कलीदी आदाब कायम किए गए, किसके? जो पाकिस्तान एंटी दुश्मन है उन सब में, और एंटी पाकिस्तान पावर्स में कौन कौन शुमार है? पोलिटिकल पार्टीज में एंटी पाकिस्तान, एंटी शिया पोलिटिकल पार्टीज में। क्यों मतलब भाई, अगर कोई वोट नून ने अपने तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस वोट का केयर टेकर अला इरशाद को बना देंगे, या वो कहेंगे भाई हम मकतब की बुनियाद पर इसका डिसीजन करेंगे, क्या नून लीग ये बर्दाश्त करेगी कि हमारा वोट का फैसला इरशाद नहीं करेगी? नहीं करेगी, नफसियाती तौर पर आपकी मुखालफत करेंगे। अच्छा आपकी आर्मी, आपके एस्टेब्लिशमेंट और इदारे क्या करते हैं? इसलिए कि इनकी ट्रेनिंग, इनकी फैसिलिटेशन, इनका फाइनेंसिस, ये सब कहां से होता है? या अमेरिकन एड से होता है और उसके बाद सऊदी अरब एड से होता है। ये क्या चाहेंगे, पाकिस्तान के अंदर शिया आजाद हो, कुदरत मान का मजबूत हो? नहीं चाहेंगे। बस पाकिस्तान में जो पहला इत्तेहाद है एंटी शिया फोर्सेस का, उन तमाम का इस बात के ऊपर कंसेंसस है कि पाकिस्तान में शियों की कोई मुश्तरक आवाज डेवलप नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये 20 साल दरअसल इसका शाखसाना है कि अमली तौर पे हमारे साथ ही पूरी एफर्ट की जा रही है कि पाकिस्तान में शियों की कोई इज्तमाई आवाज न पड़े। क्यों? इसलिए कि जो मकतबे अहले बैत के परवाने वाले हैं, ना वो सऊदी अरब के मतहत होते हैं, ना वो अमरीकी सीआईए बनाती है, ना आईएसआई बनाती है, वो पाकिस्तान की इज्जत और सरबुलंदी के लिए मैदान में खड़े होते हैं। मैं इस पे आपके सामने बात करूंगा कि तशय्यो पाकिस्तान का नजरियाती दिफा भी है और तशय्यो पाकिस्तान का जोग्राफियाई दिफा भी है। पाकिस्तान में शियत का कमजोर होना पाकिस्तान के टूटने के मुद्रा है, शियत की मजबूती पाकिस्तान की मजबूती, इस पे बात हो सकती है। मैं आपके सामने इसकी चीजें पेश करती हूँ। बस जो पहला कंसेंसस है उनके यहाँ कि पाकिस्तान के अंदर हमने शियों की इज्तमाई आवाज डेवलप नहीं होती, ये पहला कंसेंसस है। दूसरा कंसेंसस क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान में जो शिया पॉकेट्स हैं, इंदर पाकिस्तान शिया पॉकेट है, बारह चार शिया पॉकेट है, कोयटा के अंदर तकरीबन हजारा की पांच लाख साढ़े पांच लाख के राउंड कोटा पार्टी शिया पॉकेट है। क्या शिया पॉकेट्स को शियों का सोर्स ऑफ पावर नहीं बनने देना? क्यों नहीं बनने देना? क्यों? इसलिए कि मैं पहले एक मिसाल दे रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान में फकत हमारे पास उलमा फरिश्ते ज्यादा है, पूरे पाकिस्तान में उलमा ने गिलगित बल्तिस्तान से निकलकर लोगों की तरबियत की है, मसाजिद संभाली है। इसका मतलब है एक पॉकेट अगर आपके पास हो और उस पॉकेट के ऊपर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बस उन्होंने ये तय किया है कि आपके जो पॉकेट्स हैं उन पॉकेट्स को आपका पावर का सोर्स नहीं बनने देना, बल्कि उन पावर उन पॉकेट्स को आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देने वाला बनाना है। बस आप देखते हैं कि पाराचना डिस्टर्ब है, गिलगित बल्तिस्तान डिस्टर्ब है, क्वेटा डिस्टर्ब है, और कराची के अंदर आपके शिया पॉकेट है, बड़े वो भी डिस्टर्ब है। प्लानिंग का पार्ट है, ये इत्तफाकी नहीं हो रहा, ये शिया को दबाने की उस दूसरी एफर्ट का पार्ट है। और तीसरी एफर्ट क्या है? तीसरी एफर्ट ये है कि शिया चूंकि आलमी अहदाफ रखती है, आलमी अहदाफ है, बिलाकर अगर हम आलमी इंकलाब का हिस्सा, तुम्हारे अहदाफ आलमी अहदाफ नहीं, अगर हम आलमी अहदाफ रखते हैं तो फिर जब तक हमें डीमोरलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक हमारा अज़्म कमजोर नहीं किया जाएगा, जब तक डीमोरलाइज मिल्लत हम नहीं बनेंगे, उस वक्त तक इम्कान नहीं है कि वो हमें रास्ते से हटाएं। बस क्या करते हैं, टारगेट के लिए इस्तेमाल पे हमले, आपकी शख्सियत पे हमले, आपके प्रोग्रामों पे हमले, आपको साइकोलॉजिकल वारफेयर में वो डीमोरलाइज करना चाहते हैं। क्यों? एक शख्स जिसके घर में आग लगी हो वो कभी भी मोहल्ले की आग नहीं बुझा सकता, जिसके अपने मोहल्ले में आग लगी हो वो किसी दूसरे शहर में आग बुझाने के लिए नहीं जा सकता। बस वो चाहते हैं आपके घर के अंदर आग लगा दी जाए, आप इंटरनल मसलों के अंदर इतने इतने वो हो जाएं, आपके लिए खुद इतनी मुश्किल ईजाद हो जाए कि आप दुनिया में कोई रोल प्ले करने वाला तो सोच नहीं सके। बस डीमोरलाइज कर दिया गया है। हमारे लिए अब अमूमी कैफियत क्या है? वी कांट डू, हम नहीं कर सकते, हम इस कैफियत से नहीं निकल सकते, हमें इसी फिरका वारियत के मुकाबले में इसी तरह चलना है, हम इसी तरीके से मामला को लेकर चलेंगे, हमारे पास कोई वे आउट नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमें इस डेड एंड पर ला खड़ा कर दिया गया है कि हमारे पास सर्वाइवल का कोई रास्ता ही हमें नजर नहीं आता, हमें ये लगता है कि यही इसी तरीके से चलना पड़ेगा, मरते भी रहेंगे, जनाजे उठाते भी रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं ये अर्ज करता हूँ ये तीन उनके हदफ है ना, क्या हम भी बतौर मिल्लत कोई अपना हदफ मुकर्रर कर सकते हैं? क्या हम उनके अहदाफ के मद्दे मुकाबले सीधे राह नहीं बन सकते? कि हम ये तय नहीं कर सकते कि पारा चनार का साढ़े चार मासरा, साढ़े चार साल तुमने किया है ना, तुम दस साल कर लो, बीस साल कर लो, हम पारा चनार को इस काबिल बनाएंगे कि बीस साल बाद भी पारा चनार पूरी ताकत और सरबुलंदी के साथ मैदान में खड़ा होगा और कोई ताकत उसे सरेंडर करने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, मैं पारा चनार गया इस जंग के फौरन बाद, बल्कि जंग के दौरानिए में, और जब जंग के दौरानिए में मैं वहां पर पहुंचा, एक एरिया है बागजई का इलाका, तकरीबन 20 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो एक अरसे के साथ इनके कंट्रोल में है, एक अरसे से उन्होंने इसके ऊपर तसल्लत किया हुआ है, और ये वो इलाका है जहां से औरंगजेब एजेंसी, जहां से जो है वो ये जितने वजीरिस्तान के दोनों एजेंसीज हैं वो इस इलाके में आगे मिलती है, यहां उन्होंने लश्कर कशियां की हैं, 30-30 हजार, 40-40 हजार की लश्कर कशी हुई है। देखो जरा अपनी मिल्लत का पोटेंशियल देखो, 40 हजार की लश्कर कशी। अच्छा, फंसे हुए आप कहां पर हैं? पाकिस्तान से आपका रब्ता नहीं, आप पिशावर से कनेक्टेड नहीं, पिशावर अंगूर रोड आपका बंद है, एजेंसी से लश्कर कशी हुई है, फौज आपके प्रोटेक्शन के लिए मैदान में नहीं है, पुलिस नहीं है, और आपकी पुश्त पर कौन है? अमेरिका बैठे हैं अफगानिस्तान वाली साइड, टोटल आप मैसूर हैं, 3.5 से 4 लाख की वहां पर आबादी एग्जिस्ट कर रही है, और मुहासरे को कितने दिन हो गए? वीजा नहीं है, खुराक नहीं है, अदवियात नहीं है। क्या होता है, वो बागजई के एरिया से हमला करते हैं, मैंने वो मोर्चा जाकर देखा है, वो मोर्चा उसे बोतल मोर्चा कहते हैं, उस मोर्चे को मैंने जाके देखा, वो बोतल नुमा है, जैसे बोतल की टॉप बहुत छोटी है और नीचे से उसके ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल वो पहाड़ी इस तरह की है। वहां पर फौजी अहदेदारों ने मुझे ये कहा कि अगर इस मोर्चे को हमें टेक ओवर करना हो, हमें कम अज कम 10 दिन चाहिए और हमें इसके लिए टैंक चाहिए, हमें इसके लिए एयरफोर्स चाहिए। मैंने जब उनसे पूछा कि ये 20 किलोमीटर का इलाका ये बोतल मोर्चा कैसे फतह हुआ और ये दुश्मन की इतनी बड़ी लश्कर कशी को तुमने कैसे मुकाबला किया, कहा हमारी इस नस्ल ने ये तय कर लिया है कि अगर हम अपनी आइंदा नस्लों को इज्जत और सरबुलंदी की जिंदगी देना चाहते हैं, हमें शहादत और मौत को कबूल करना होगा। बस कहा हम आमादा हुए, हम मैदान में आए, हमने कहा दुश्मन है तो बेशक है, लेकिन आखिर हमारा इमाम हमें तनहा नहीं छोड़ेगा, ہم میدان کے اندر رہیں گے امام ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا یہ ہوا کہ جب ہم نے باغ زئی کے اوپر حملہ کیا, جب ہم نے اپنا یہ علاقہ جو 20 سال سے مقبوضہ تھا وہ لینے کی کوشش کی, جب ہم نے اس 30 سے 40 ہزار کے لشکر کو کٹیل کرنے کی کوشش کی, کہا کہ اس منطقے میں ہمارے پاس ریسورسز کم تھے. میں نے جلی ہوئی مساجد دیکھی وہاں پر, پورے کی پوری آبادی جلی دیکھی, مشین بھی انہوں نے جلا دی تھی. کہا جب ہم میدان میں نکلے ہم نے دل سے لبیک کیا حسین کا, ہاتھوں سے نہیں, زبان سے نہیں, دل سے لبیک کیا حسین کا. کہا جب اس مورچے تک ہم پہنچے تو ہمارے دو گروہ بن گئے. وہ آخری رات تھی اور اس رات میں ہم نے اپنا شعر بدلا. ہم نے ایک طرف سے لبیک یا حسین کا شعر بلند کیا اور ایک طرف سے لبیک یا زہرا کا شعر بلند کیا. کہا یہ مورچہ جو فوج کہتی ہے مجھے 10 دن چاہیے, ہم نے یہ مورچہ ایک رات میں 1.5 گھنٹے کے اندر فتح کیا اور اس کے لیے ہمیں 50 ہزار کی جانیں دینی پڑی. میں نے کہا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کہا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں طالبان کی لیڈرشپ نے میٹنگ کر کے یہ کہا دیکھو اپر قرم ایجنسی تو گئی, وسطی قرم ایجنسی تو گئی, اگر تم لوور قرم ایجنسی جہاں خالصتاً ان کا علاقہ ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ایریا بھی تمہارے پاس رہو تو شیعوں کے ساتھ صلح کر لو, جنگ چھوڑو. اس لینگویج پہ نہ فوج لا سکی ان کو, نہ حکومتیں لا سکیں گے. کون لے کے آیا ہے؟ اپنی عزت اور کمٹمنٹ کی بنیاد پر کھڑا ہونے والی ملت خود لے کر آئی. آج ہزار مرتبہ وہ سوچیں گے اگر پارا چنار کے اوپر دوبارہ جنگ کرے, کوئی انشاءاللہ تعالی پارا چنار نے سین بدل کے رکھ دیا ہے اس منطقے کا. میں یہ عرض کروں گلگت بلتستان میں بھی ایسے پوٹینشیل ہے, ہر علی کی شیعہ میں یہی پوٹینشیل ہے. ہمیں اپنے اس پوٹینشیل سے دور کر دیا. اب میں آتا ہوں کہ پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بالکل ایک اور بات ہوگی. بس ہم نے پاکستان میں صورتحال کو چینج کیا ہے. آج اگر وہ پارا چنار کو, مجلس عبادت یہ عرض رکھتی ہے کہ آج اگر وہ پارا چنار کو اس طریقے سے سپریس کرنا چاہتے ہیں, ہم ایسا میکانزم ڈیرائیو کریں گے, ہم ایسا خود انحصاری کی پالیسی بیان کریں گے کہ نہ ان کے لیے آئندہ رستے بند کرنا آسان ہوگا, اور اگر وہ یہ کام کریں گے بھی صحیح تو انشاءاللہ دسیوں سال کے اگر پارا چنار کو اس شیپے ابھی تالم میں رہنا پڑے تو وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا, بلکہ اپنے آقا کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنی عزت اور سرمتی کا دفاع کرے گا. یہ ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے طے کیا پاکستان میں یونیفائڈ آواز نہیں بننے دیں گے. ابھی یہ دھرنا آپ نے رکھا, بزرگان بھی بیٹھے ہیں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستان میں کوئی ایک مثال ایسی ہے کہ اس طریقے سے پر امن ایجوکیشن کے ذریعے سے آپ نے ایک کرنٹ گورنمنٹ کو ڈیزالو کرنے پہ مجبور کیا؟ کوئی ایک مثال آپ بتائیں. نہیں, آپ نے کیا. آخر کیا چیز تھی؟ ایک ہفتہ پہلے ایک واقعہ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. آخر کیا چیز تھی؟ یقیناً دو چیزیں تھیں. ایک یہ کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ شہداء کے لواحقین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شہداء کے خون کو اس کوئٹہ کے کربلا میں دفن نہیں ہونے دیا, بلکہ مثل جناب زینب سلام اللہ علیہا, مثل پیرو امام سجاد علیہ السلام, انہوں نے اس خون کے پیغام کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے ایک میکانزم ڈیزائن کیا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر مجلس عبادت کا یہ سیٹ اپ نہ ہوتا, کیا یہ یونیفائڈ ایفرٹ ہو سکتی تھی پورے پاکستان میں؟ کیا یہ پورے پاکستان میں ایک ہی طرح حکومت کو مفلوج کیا جا سکتا تھا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ نہ ریلوے چلتی, نہ ان کے ہوائی اڈے چلتے, ان کی جی ٹی روڈ بند ہوتی, کے ایل پی روڈ بند ہوتا, کراکرم روڈ بند ہوتی, تمام اہم شرائط بند ہوتی, پورا پاکستان جیم ہو کے رہ گیا؟ یہ خوشی سے نہیں کیا گورنمنٹ نے, یہ آسانی سے نہیں کیا. جب گورنمنٹ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک ملت آ گئی ہے اور ملت منتشر نہیں ہے, ملت بگڑی ہوئی نہیں ہے, بلکہ ایک لیڈرشپ کے ساتھ یونیفائڈ ہے, اس کے آواز پر یہ دھرنے ختم ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوکل انڈرسٹینڈنگ کریں, علی پور والے علی پور والوں کے ساتھ کر لیں, ملتان والے ملتان والوں کے ساتھ کر لیں. ہر ایک کو پتا تھا یہ ویل کنیکٹڈ ہے, ویل آرگنائزڈ ہے. جب تک کوئٹہ میں ان کی لیڈرشپ دھرنا ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتی, پاکستان میں دھرنے ختم نہیں ہوں گے, پاکستان اس مفلوجی کیفیت سے نہیں نکلے گا. جب انہیں یہ یقین ہو گیا تب انہوں نے آپ کے سامنے سرنڈر کیا. بس جانو, آج آپ کو ایک یونیفائڈ قوت ملی ہے, آج آپ کو آواز ملی ہے, تو پہلی بار تشیع کا موقف اور آواز وہ ایوانوں کے اندر بھی گونج رہا ہے, پارٹی کے اندر بھی گونج رہا ہے, میڈیا کے اندر بھی گونج رہا ہے, اس لیے کہ پہلی بار آپ کو ایک یونیفائڈ آواز ملی ہے. بس آپ نے اس موضوع کو دشمن کو انشاءاللہ شکست سے دوچار کیا ہے. اور جو تیسرا تھا کہ وہ چاہتے ہیں اوور آل آپ کو ڈیمورلائز کریں, آج یہ ثابت ہو گیا, اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا. دیکھیں وہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے, مار لیں گے, قتل سب سے بڑی دھمکی ہوتی ہے. لیکن ابھی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے ہمارا یہ عقیدہ درست ہے اور یہ عقیدہ ثابت ہوا ہے، شہید صرف خود زندہ نہیں ہوتا بلکہ شہید اگر 3 دن پہلے بھی شہید ہوا ہو، شہید اگر کوئٹہ کے ریگستان کے کوئٹہ کے پہاڑوں کے اندر بھی ہو، شہید اگر دور دراز منطقے کے اندر بھی ہو، وہ حسین کے مکتب کا شہید خود بھی زندہ ہوتا ہے، پوری ملت کو بھی زندہ کرنے کا سبب ہے۔ یہ شہید نے شہداء نے ملت کو زندہ کیا۔ بس ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے، صلاحیت بہت ہے، ہمیں اس کو آشنا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس جب تک ہم سیاسی آزادی حاصل نہیں کرتے اس وقت تک ہم پاکستان کے اندر ایک ملت کے طور میں بھی سروائیو نہیں کر سکتے اور عزت کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہ کیسے ممکن ہے، میں اس پہ چند چیزوں کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ ایک بار دور تک پڑھ لیا ابھی میں نے سوال تو سنی، جو بہرا کوشش کر رہی ہے وہ آپ کی بہترین خدمت گزار ثابت ہو، جس کے اندر علماء بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اور بزرگان بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ملت کی خدمت کے فریضے کو خدمت کے انداز میں انجام دیں، تو انہیں اس بات کا بھرپور اندازہ ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے ہم نے بڑے سے پروٹیسٹ کیے ہیں گلگت بلتستان کے اور گجیا، لیکن پروٹیسٹ کے میدان میں ہم جیت گئے، ڈائلاگ کے ٹیبل پہ بھی ہم جیت گئے، لیکن جب امپلیمنٹیشن کا وقت آیا ہے تو پولیٹیکل بیک اور پاور نہ ہونے کی وجہ سے ہم آگے۔ ہم نے یہ دیکھا ہمارے وہ پالیٹیشن جو مکتب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مختلف پارٹیز کے اندر ہیں، نون کا پی سب کے، اپنے اندر یہ کیپیسٹی نہیں پاتے، یہ صلاحیت نہیں پاتے کہ اپنی پارٹی کے اندر ہی سے شیعہ مفادات کا تحفظ تو کریں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہ لوگ پارٹی کے اندر بھی شیعہ مفادات کا تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی شیعہ مفادات کا تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں، حلقے کے اندر بھی شیعہ مفادات کا تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں، اور پریکٹیکلی فضا ایسی بن گئی ہے، شیعوں کا مرنا ایک ایسی روٹین بن گئی ہے جسے ہم خبر بھی نہیں کرا جا سکتے، کہتے ہیں خبر بھی نہیں رہی۔ بس ہم نے پہلے جو آغاز کیا، ہم نے اپنے پروگرام کو، پورے پلان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ہمارا پولیٹیکل پروگرام دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ہمارا جو پولیٹیکل پروگرام کا ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کا ہے، جو 20 سال کا پلان ہے، ہم کسی فوری نتیجے کی طرف نہیں بڑھ رہے، ہم کوئی ایسی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرنا چاہ رہے جس سے ہمارا موجودہ پاکستان کے مومنین جو ہے وہ کسی ڈسٹربنس کا شکار ہو، ایسا نہیں ہوگا ان شاء اللہ۔ بس جو ہمارا 20 سال کا پلان ہے وہ ایک جامع پلان ہے، میں اس جامع پلان میں بس صرف 2 پوائنٹس اگر آپ کے لیے پیش کروں تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اندازہ ہوگا کہ اس پلان کے اندر جو ہے کس انداز سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ مثلا ہم نے دیکھا گلگت بلتستان شیعہ منطقہ کا ہے، فرج نار شیعہ منطقہ کا ہے، کوئٹہ شیعہ منطقہ کا ہے، لیکن بعض وہ شیعہ بیلٹس کہ جس میں اتنی بڑی شدت ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر کام کریں آئندہ 5 سال کے اندر، 10 سال کے اندر ہم پولیٹکس کا نقشہ بھی بدل سکتے ہیں، بیوروکریسی کے اندر بھی نقشہ بدل سکتے ہیں۔ ہم نے ایسے علاقوں کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے۔ ابھی جب ہم نے اس پر پلان کیا ورکنگ کی تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک علاقہ ہے جس میں چکوال کا ایریا شامل ہے، اس کے بعد یہ منڈی پاؤتین سے شروع ہوتا ہے، اس کی دوسری طرف جو ہے ضلع حافظ آباد کا علاقہ ہے، دریا کی یہ بیلٹ چلتی ہے، ایک طرف منڈی پاؤتین ہے، دوسری طرف ضلع حافظ آباد ہے، پھر ایک طرف سرگودا ہے، دوسری طرف جو ہے جھنگ چلوٹ ہے، اس سے آگے پھر ضلع جھنگ کا علاقہ آتا ہے، اس سے پھر آگے ضلع بکر کا علاقہ آتا ہے، اس سے پھر آگے ضلع دریا کا علاقہ آتا ہے۔ صرف یہ ایک منطقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی اسٹیٹسٹک ہمارے پاس ہے، اس کے اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں، اس ایک منطقے میں قریب 1 کروڑ علی کے شیعہ بس گئے، لیکن کبھی ہم نے اس پروٹیکشن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تو کام بھی اس کے اوپر نہیں کیا۔ 1 کروڑ شیعہ اس ایک منطقے۔ دوسرا ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، میں بھی دوستوں کو مثال دے رہا تھا، پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کی شرح ہے 35%، 36% ایوریج، بعض جگہوں پہ زیادہ ہوگی، بعض جگہوں پہ کم ہوگی، لیکن ایوریج جو ہے وہ 36%۔ اس کا مطلب ہے ہمارے یہاں بھی ووٹ کاسٹ کی شرح 36%، لیکن ہمیشہ جو تھوڑے بہت مائنورٹی میں ہوتے ہیں وہ ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنا پولیٹیکل پروگرام آرگنائز کر لیں ہم اس کیبینٹ کو 35% سے 70 پہ لے جا سکتے ہیں۔ پس جس حلقے کے اندر ہمارا 40,000 بنتا ہے وہ ویسے 40,000 بنتا ہے، صرف ووٹ کاسٹ کی شرح بڑھانے سے وہ 40,000 80,000 میں بدل جائے گا۔ آپ بہت بڑا، آپ کہیں گے کیا یہ عملی ہے کہ نہیں ہے، میں صرف ایک علاقے کی مثال دیتا ہوں، آپ اس کا اسٹیٹسٹک اٹھا کر دیکھیں، सिर्फ एक हल्का जो जंग का हल्का है, जहां पर सिपाही सभा का मुकाबला शिया या का मुकाबला दूसरा कोई होता है, इस एक हल्के में कभी रणबीर कभी जानकारी से पता सकते हो गर्व बनाया इसके साथ। इस हल्के के अंदर शिया वोट कास्ट की शरह 90% जब भी कोई चैलेंज आता है अगर आप उसका रिस्पांस दे दें तो आप एक दर्जा ऊपर चले जाते हैं, और अगर उसका रिस्पांस न दें तो फिर क्या होता है, तनाजुर शुरू हो जाता है। बस वहां एक चैलेंज था, आपने उसका जवाब दिया। अगर हम मुल्क की सतह पर इसको एक चैलेंज के तौर पर लें और इस चैलेंज का जवाब ये दें कि हम अपने वोट कास्ट की शरह को दो बराबर ले जाएंगे, तो पाकिस्तान में 5 करोड़ शिया पूरे पाकिस्तान का फैसला करने की सलाह करते हैं। इम्कान पजीर है, ये चीजें ख्याली नहीं है, एक हल्के के अंदर इम्कान पजीर हुआ है तो बाकी इलाकों के अंदर भी हो सकता है। इसी तरह हमें इंशाल्लाह आइंदा, चूंकि अभी तो बंजाती इलेक्शन तो वो है भी नहीं इंशाल्लाह, चूंकि वो गैर जमाती बुनियादों पर होते हैं, उसमें शीयत की बुनियाद के ऊपर हम हजारों परसेंट जो है वो कर सकते हैं, ये भी हमारे आइंदा की पोलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त जो हमारी 6 माह की पोलिटिकल प्लानिंग है उसके अंदर मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमने उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया, 4 उसके ग्रिड्स। नंबर 1, हम ये चाहते हैं कुलियात कि पाकिस्तान में मकतब अहले बैत के परवाने ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट में, हाँ वो किसी भी पार्टी से ना लगे, अभी हमने कदम नहीं लगाए। अलबत्ता मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि हमें जाना इस तरफ है, आज नहीं जाना बेशक, लेकिन जाना इसी तरफ है कि जब तक हम पार्टियों से मावरा होकर मिल्लत के मफाद के लिए नहीं सोचेंगे तब तक हम इन्हीं क्लचेस के अंदर फंसे रहेंगे। हम में से हर बंदा इस तकलीफ का जिम्मेदार होगा जिससे मिल्लत गुजरेगी, हमारा ये सफर सुस्त हो जाएगा, जाना उसी तरफ। लेकिन मैं इमीडिएट बात करता हूँ, फौरी वाली बात करता हूँ, फौरी तौर पर क्या। नंबर 1, मकतब अहले बैत के परवाने जाने चाहिए, पर जहां पर भी कोई मकतब अहले बैत का मानने वाला इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रहा है वहां पर हमारी ये कोशिश होगी कि उसको फैसिलिटेट किया जाए ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्लान्ड वे में, इस तरीके से कि वो आपकी पावर को, आपकी सपोर्ट को भरपूर तरीके से फील करें। और ये सेक्टेरियन नहीं होगी, ये फिरका वाराना नहीं होगी, बल्कि इसका अंदाज केस टू केस देखकर हम ऐसा अंदाज इख्तियार करेंगे कि जिसके नतीजे में फिरका वारियत नहीं फैलेगी लेकिन आप भरपूर तरीके से उस मसलन शिया के लिए भरपूर तरीके से कन्विंसिंग कर रहे हैं और वो बावर करे कि मेरे से बात में आपने उसको वोट दिए इसलिए कि वो पार्लियामेंट में भी मकतब का तर्जमान बने, पार्टी के अंदर भी मकतब का तर्जमान बने और हल्के के अंदर भी मकतब की तर्जमानी करें, ये एक बात। दूसरा, जहां शिया नहीं है वहां मुतदर अहले सुन्नत को आना चाहिए, इससे कम पर कंप्रोमाइज नहीं करते। तीसरा, जहां तकफीरी ग्रोह खड़े हैं जो अपने अलावा किसी को मुसलमान नहीं समझते, अभी चूंकि इसमें साहबा के ग्रोहों ने मुख्तलिफ जगहों के इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया, जैसे जंग है, जैसे कराची के अंदर बाजी का ऐलान किया, डेरे इस्माइल खान ने ऐलान किया, वहां हमारा ये प्लान है कि हमने पूरी एफर्ट करके तमाम वोट की पावर्स को इस्तेमाल करके अपने पोलिटिकल प्रोसेस में इस तरीके से इन्वॉल्व होना है, हमने इन दहशत गर्दों को पार्लियामेंट अटेंड नहीं करना है, हमने इन दहशत गर्दों को पार्लियामेंट में जाने नहीं देना, हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि ये लोग पार्लियामेंट में जा सके, ये एक टारगेट है। लेकिन जो चौथा और इंपॉर्टेंट हमारा टारगेट है वो ये है कि जिन हल्कों में हमें नुकसान नहीं, नुकसान से मुराद मुकाबले में कोई शिया नहीं खड़ा, हमारे खड़ा होने से कोई तकफीरी ग्रोह जीतने का इम्कान नहीं है, उन हल्कों के अंदर हम अपने लोग खड़े करेंगे, अलबत्ता इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, वजह से भारत के टिकट से नहीं, क्यों ये पहला मरला है, हम पहले मरले में वजह से बात टिकट से खड़ा नहीं कर रहे शुरू आली का प्रश्न, लेकिन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में क्यों, इसलिए कि पहली मरतबा वो लोग जो नजरियाती भी हों, मकतबी भी हों, तशय्यों का दर्द भी रखते हों, ये समझते हो कि हम शीख बुनियाद पर सियासी मैदान के अंदर आए हैं, वो सियासत को सीखें, मौजूदा प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हों। और मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर ये हमारे सेंटरों या दर्जनों लोग अगर आइंदा के प्रोसेस में इस मरले में कोई एक बंदा भी कामयाब ना हो सके, कोई 20,000 वोट ले जाए, कोई 50,000 वोट ले जाए, हार जाए, लेकिन आइंदा के लिए ये वर्थ डेवलप हो जाएगी कि इस बंदे के साथ 50,000 वोट है, इस बंदे के साथ 40,000 वोट है, वो आइंदा की पॉलिटिक्स में कैरी करेगा और यूं हम अपनी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल टीम को पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे और बगैर किसी नुकसान मान के ये लोग हमारे हेड हो जाएंगे और फिर ये पॉलिटिक्स होती है। मैं आपको मिसाल दूं, सर्वदा के एक हल्के में हमने ये देखा, सर्वदा में तो एम एन ए आते हैं, एक नून से है और एक पीपी से है, लेकिन सिटी से आज तक कुछ नहीं आया। सिटी में 3 एमपी की सीटें हैं। पहली बार जब आपने हम पॉलिटिशियंस की मीटिंग की, अभी आप बैठे हैं सरगोधा में, हमने तमाम शिया एमएलए और एमपीएस मौजूदा या सबका कि तकरीबन 30 के करीब उनकी तादाद में उनको बिठाया, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हमने आज तक सिटी के अंदर एक शिया भी बंदा खड़ा नहीं हुआ है, खाली है, यानी इसका मतलब है वहां के पॉलिटिक्स में हमारा रोल नहीं है। कहा कि अगर हम एक हल्के से बंदा खड़ा करते हैं जिसके अंदर शिया अक्सरियत आबादी है और दो हल्कों में हम किसी भी पार्टी की सपोर्ट कर लें तो नुकसान कोई भी नहीं हुआ और इसका इम्कान बहुत ज्यादा है कि हमारे ये वोट वैसे भी जाया जाने थे, लेकिन दो जगहों पे ऑर्गेनाइज वोट के यूज से हम तीसरी जगह पर अपने कैंडिडेट को कामयाब भी करा सकते हैं। बस ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जहां एक हल्के में आप खड़ा करके अच्छा वोट गेन कर सकते हैं और उसके नजदीकी दो हल्कों में मुमकिन है आप वोट देने से, जो वैसे भी आपका जाया होता है, आप ना भी कहें कहीं ना कहीं तो वोट देना है, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज में उसको कहीं यूटिलाइज कराएं जिसका नतीजा लेंगे उस एक हल्के के अंदर, तो इसका बहुत इम्कान है कि कई हल्कों में आप नए लोगों को डेवलप करने में भी कामयाब हो जाए। अब मैं यह करता हूँ हमारे साथ इस वक्त दो हल्कों की आपके सामने इंटरेस्टिंग सूरत हाल रखना चाहूंगा। एक हल्का हमारा है डेर अस्मी खान। डेर अस्मी खान में पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब पढ़ते थे और उन्होंने शियों की जो नस्ल कुशी की आपके सामने, उसके बाद फैसल कुंडी साहब की बारी है। ये वो पीरियड है जिसके अंदर शियों को हिजरत पे मजबूर होने पड़ा, बस ना उन्होंने ना इन्होंने, दोनों में ये इत्तफाक है कि या मैंने आना या तुमने आना, कोई तीसरा बंदा वहां पर नहीं है। शियों को ऐसा फुटबॉल बना दिया गया है कि इसे इन दो की ठोकरों के अलावा किसी और जगह पर जाने की गुंजाइश नहीं है। हमने ये फैसला किया है कि हम ठोकर नहीं बनेंगे, हम इस मर्तबा इज्जत के साथ खड़े हो जाएंगे और वहां तमाम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है, वो वहां पर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में खड़े होंगे। वो जानते हैं कि ये भी कातिल है और वो भी कातिल है, इस मर्तबा को दोनों को ये एहसास दिलाएंगे कि वहां पर शिया वोट की कितनी वैल्यू है और इंशाल्लाह पहली मर्तबा इस बात का भी इम्कान है। ये वो एरिया है कि जहां से पहले तहरीक के प्लेटफॉर्म से 17,000 वोट लिए थे इस एक हल्के से, इसका भी इंशाल्लाह इम्कान है कि अगर हम उसके नजदीकी दो हल्कों में कम्प्रोमाइज करने में कामयाब हो जाए तो यहाँ से अहले बैत के नाम की बुनियाद पर हमारा इंशाल्लाह कैंडिडेट जो है वो कामयाब हो जाए और ये दोनों जो है वो लीडर हों जिन्होंने मिलकर शियों के खून का इस्तेमाल किया। में बड़ा इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जंग का हल्का है, मैं आपको उसकी एक खूबसूरत मिसाल देता हूँ। जंग के उस हल्के में जहां से हमेशा पोलिटिक बनता है, पहली बार शिया वहां पर मुकाबले में खड़ा हुआ, मजलिस में उसकी सपोर्ट का ऐलान किया, मलिक इसहाक ने वहां जाकर तकरीर की, उसकी तकरीर ये है रिकॉर्डेड है, उसने कहा शियों की ये जरूरत कि वो इस हल्के से हमारे मुकाबले में बंदा खड़ा करें, लेकिन हमने वहां पर ये प्लान किया है कि ओवरऑल पॉलिटिकल सूरत हाल में तारिक कादरी साहब ने की और दीगर लोगों ने जो सपोर्ट का ऐलान किया है इस कैफियत में है कि ये मैं नहीं दावा करता कि हम जीत जाएंगे, लेकिन एक ऐसा सख्त कंपटीशन होगा कि इनको दांतों पसीने आएंगे। और मैं उसका जो चेंज बताना चाह रहा हूँ ये है कि आप जंग के किसी एक एरिए से दाखिल होकर जंग की दूसरी नुक्कड़ से निकल जाए, आपको मुस्लिम लीग नून का बंदे का होर्डिंग मिले जो बड़े वाले होर्डिंग है, आपको खाफ वाले का होर्डिंग मिले, पीपी वाले का होर्डिंग मिले, तमाम होर्डिंग के ऊपर बगैर किसी इस्तस्ना के जो सबसे बड़ी तहरीर लिखी हुई है वो लिखी हुई है लबैक या हुसैन। ये किसने उनके पांव के तले से जमीन निकाली? पहली बार उनको ये एहसास हुआ है कि शिया वोट खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शिया किसी की जेब का वोट नहीं है, शिया किसी की जेब का माल नहीं है कि वो जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करे। बस जब हमने उनको खड़ा करना शुरू किया है ये चेंज वहां पर आना शुरू किया, ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। बस ये एक्सेप्टेंस है, वो जो हुसैन का नाम नहीं लेते थे वो लबैक या हुसैन का फिक्र लेके जो आपका शहर है, बस यूं हम तब्दीली ला सकते हैं। खुलासा ये है कि हमने ये 4 कागज रखे हैं और इसके हवाले से अभी आप दोस्तों को भी इंशाल्लाह ये बताना है कि बेदाखर हम आम लोग नहीं हैं, हमारी जवाबदेही भी पीपी नून काफ में नहीं है, खुदा के सामने है, जमाने के इमाम के सामने। अगर हमने सियासी तौर पर कोताही की और अपनी मिल्लत की इस ब्लैक मेले के अंदर कहीं इन्वॉल्व रहे, हम न इस दुनिया के अंदर कामयाब है न अगली दुनिया के अंदर। आज अगर अपना बचपन याद करें, आपको कल की बात करें, कल की बात होती है, आप जब कब्र में होंगे ना तब भी ये कल की बात है, ये उसी तरह पलक झपकने में गुजर जाएगा, बस ये सोचे बहुत करीब है, लिहाजा हम कोताही नहीं करें। हमारे किसी एक्ट से, हमारे किसी फेल से, ना मिलन में। हमने जो पूरा प्लान दिया है, इसकी पूरी असल यह है कि मिलन में कोई इंतशार नहीं आना चाहिए, मिलन में कोई दाखिली कंपटीशन नहीं बनना चाहिए, इंटरनल रिफ्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन कंसेंसस यह है कि इसके बावजूद वो राह निकाली है जिसके नतीजे में मिलन को खुद एनएसआरआई की तरफ हम लेके जा सके, और इसका बहुत ज्यादा इम्कान है। हम ये चीजें मैनेज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि ज्यादा और बहुत होगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर की सूरत में मैं ज्यादा चीजें आपसे लेना चाहूंगा। हमने करीब 70 हल्कों का, जिसमें कराची समेत इंटीरियर से इंटीरियर ब्लॉकिस्तान पंजाब के बाद इलाके, करीब 70 हल्कों का हमने प्लान चार्ट आउट कर लिया है। और मजलिस वादत 70 हल्कों में बाज जगहों पे डायरेक्टली यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ, और बाज जगहों पे इनडायरेक्टली यानी वहाँ पर जो मौजूद शिया या ऐसे मुकदिल अफराद हैं उनके साथ जो है वो हम वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके नतीजे में एक नए सफर का आगाज होगा। दूसरी बात आपको ये करना चाहूँगा, पहले ये लोग आपको कोई वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं, तमाम पार्टियों की ओर अभी जब उन्हें आपका इज्तमाही तशक्कुल भी नजर आया है, और ये भी नजर आया है कि आप सिर्फ बातों वाले लोग नहीं है बल्कि आप सियासी मैदान के अंदर भारत भी हो चुके हैं, और आप सियासी अजायम भी रखते हैं, और आप क्योंकि मैंने खुद इस जगह में जंग के एरिए का शायद हूँ, मैं सरगोधा के एरिए का शायद हूँ, मैं भक्कर के बाद इलाकों का शायद हूँ, कि उन्होंने जब मकामी एमएलए जुबाद अल सुन्नत है वो उनके पास गए हैं, और आजादारी के नजाम में उन्होंने वहां जाकर उनको पैसे देने की कोशिश की है, और आइंदा के इलेक्शन के हवाले से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने वहां उनको डिक्लेयर किया है और कहा है हमारा ये वोट अब हमारा नहीं है, जब से हमने नब्बे किया हुसैन कहा है हमारा ये वोट इमाम हुसैन का है, जाओ अगर तुमने हमसे बात करनी है तो हमारी लीडरशिप से बात करो, वो जहां कहेंगे हम इस वोट को यूटिलाइज करेंगे, हम इस वोट को बगैर किसी प्लान के तुम्हारे हाथों में देने के लिए तैयार नहीं
है।
ये आगाज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे इलाकों में जाहिर है ये वक्त लेगा, मैंने कहता कोई इमीडिएट चेंज आ गई, मैंने कहता कोई फौरी तौर पे हम नतीजे ले लेंगे, लेकिन आज पहला कदम उठाएंगे तो किसी जगह पहुंचेंगे। आज दुरुस्त हम में आज क्या कैफियत हो गई है मैं आपको बताऊं, अभी जब पीपल्स पार्टी की आला तरीन टीम ने हमारे साथ मुलाकात की है, जिसमें पहले जरदारी साहब शामिल थे, फिर बाद में उन्होंने डिप्टी स्पीकर शैला रजा को किया, मैं उसको हेड कर रहा था उसके नेगोशिएशन को, उसके बाद फैसल गरीब कुट्टी साहब और नदीम अफजल चंद साहब, पहली बार उन्होंने ये कहा, उनके ये अल्फाज आपके सामने बयान कर, कहा हमें दांतों पसीना आ गया आपसे मुजाकरात करते हुए, और ये पहली शिया टीम हमारे साथ मिली है जिसने आपसे न डाले का मुतालबा किया है, न गार्ड्स का मुतालबा किया है, न सिक्योरिटी का मुतालबा किया है, न छोटे मोटे नस्ल के लाइसेंस का मुतालबा किया है, जिन्होंने हमारे साथ बात किया कि हमारे साथ टेक्टिकल लेवल की बात नहीं करो, हमारे साथ स्ट्रेटेजिकल लेवल की बात करो कि किस तरीके से पाकिस्तान में इस्लाम को भी मजबूत किया जा सकता है, तशियों की हिफाजत की जा सकती है, और इस मुल्क की हिफाजत की जा सकती है। ये उनके अल्फाज हैं, और ये पहली बार हुआ है, आप नहीं गए, इमरान खान आपके धर्मों में आया, मुनव्वर हसन साहब के कभी आपसे करीब नहीं जाते थे, आपके धर्मों के अंदर आए, तहरीके इंसाफ के अलावा तकरीबन तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, और मैं अभी तकरीबन 7 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से मिलकर आया हूँ, और अभी ये जो एक चैलेंज किया है ये आपकी इज्तमाही इस्तकामत की वजह से हुआ, वो चैलेंज किया था, आपकी बड़ी कामयाबी थी, आपने हुकूमत को चेंज कराया, गवर्नर राज, हम नहीं कहते गवर्नर राज आइडियल है, लेकिन इमीडिएट यही हो सकता था, वो आपने दिया, लेकिन अभी बाज ताकतों को ये हजम नहीं हुआ, फजल रहमान मुसलसल खड़ा है, उसने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया जिसमें उसके साथ पैसावा शामिल हुई है, कोयटा में उसके मुजाहरे में पैसावा और वो थे, बस हमने ये तय किया है इंशाल्लाह हम कमजोर नहीं है, हम पाकिस्तान में निचली सतह पर भी कुदरतमंद हो रहे हैं, हम ऊपर की सतह पर भी कुदरतमंद हो गए हैं। हमने कल मजलिस-ए-वादत के सियासी सेल ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का खुद कोयटा के अंदर इनकार किया है, जहां बैटल ग्राउंड है, हमने वहीं जंग लड़ने का ऐलान किया है। कल उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सिवाय JUIF के फजलुर रहमान के तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने शिरकत का ऐलान कर दिया, और वहां हम इनको बताएंगे कि फ्रंट कैसे बनाया जाता है और ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं, और हम इन दहशत गर्दों के मद्दे मुकाबले एक अवामी ब्लॉक बनाकर दिखाएंगे जो इत्तेदार पसंदों पर मबनी होगा, और जो पाकिस्तान में इन दहशत गर्दों के मद्दे मुकाबले सरबराह बस, हमें पूरी वाइजली आगे बढ़ना होगा, हमें पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। कल की आप पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कोयटा के अंदर हो रही है वो हमारे लिए इंशाल्लाह एक बड़ा चेंज लेके आएगी। अभी ये कहते थे, पहले हम कहते थे शायद हमें इनसे मिलना चाहिए, अब वो हमसे मिलने के लिए टाइम लेते हैं, शायद हुसैन साहब और चौधरी शुजात आपसे मिलने के लिए आए, तहरीके इंसाफ वाले आपसे मिलने के लिए आए, जमात इस्लामी वाले आपसे मिलने के लिए आए, अब पहली बार तशय्यों की इस अंदाज में डिग्निटी का सफर आया, हम इस डिग्निटी के सफर को आगे बढ़ाएंगे। नहीं मुमकिन अगर उनको ये नजर ना आए कि आप लोग निचली सतह पर भी मुनज़्ज़म हैं, नहीं मुमकिन कि अगर नजर ना, एक इलाके में यूं हुआ जाना उस तरफ है। उस इलाके के लोगों ने उनको एक लिस्ट पकड़ा दी, कहा तुम बड़े जुल्म में मुब्तला हो ना, मकामी मैंने बड़े फख्र में मुब्तला हो, ये लिस्ट करीब कोई 5,000 लोगों की बनती थी, कोई समझे 600-700-800 घरों की बनती। उन्होंने कहा ये लो ये लिस्ट है तुम्हारे पास, जाओ जिस घर में जाना चाहते हो जाओ और इनसे वोट मांगिए। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि जब तुम इनके पास जाओगे ना, ये तुम्हें कहेंगे वोट मेरी नहीं है, वोट इमाम हुसैन की अमानत है, हम तय कर चुके हैं, आज हमारा वोट तुम जैसे दुनियादारों के लिए इस तरीके से नहीं आ रहा कि मैं अपनी गली के लालच में, सोलन के लालच में, एक नाली के लालच में अपना ये वोट देकर मिल्लत की इज्जत का सौदा करूं, नहीं मैं उन इज्तमाई अहदाफ को मद्देनजर रख के करूंगा। और ऐसा हुआ कि उसके बाद जब वो उन अवाम के अंदर गए जिनके ऊपर उन्हें था कि ये तो मेरे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, ये तो मेरे मुकाबले में बात नहीं कर सकता, जब उसके पास गए तो उसने कहा आपका एहतराम सारा अंगों पर, आप हमारे लिए बहुत है, आप हमारे लड़के के बढ़ेरे हैं, लेकिन वोट अब आपका नहीं है, फलां मर्जी में बरगाह में जाओ, वहां हमारे फलां शख्स में बैठी है, उससे जाकर बात करो, वो तय करेंगे। ये चेंज, जब तक इन बड़ेरों को, जब तक इन बड़ों को ये पता नहीं चलेगा कि ये चेंज इस वक्त इस मुल्क के अंदर आ गई है, तब तक वो आपके साथ ना नेगोशिएट करेंगे, वो उस तकबर से बाहर नहीं निकलेंगे जिस तकबर में वो मुब्तला है। हमें उन्हें इस तकबर से बाहर निकालना है, हमें उन्हें जमीनी हकीकत की तरफ लेकर आना है, हमें मिल्लत की इज्जत और सरबलंदी को यकीनी बनाना है, और उसके लिए हमें यह तय करना होगा कि इस पहले मरहले में हम इन चार असूलों को और आइंदा के लिए अपने कामों की बुनियाद पर इसका वसी इम्कान मौजूद है कि हम पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बड़ी तब्दीली के सफर का आगाज करें। और पाकिस्तान में तशय्यो, मैं शहीद हुसैनी की इस ख्वाहिश से अपनी बात बयान करता हूँ। शहीद हुसैनी ने यह कहा था, हमारी तीन हैसियतें, हम शिया हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम मुसलमान हैं। हम शियत के लिहाज से भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पाकिस्तानी होने के लिहाज से भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और मुसलमान होने के लिहाज से भी। और आखिरी बात यह कि पाकिस्तान की सरजमीन ऐसी नहीं होगी कि जिसके अंदर न दाखला पॉलिसी के अंदर शियों की इन्वॉल्वमेंट हो, न खारजा पॉलिसी के अंदर शियों की इन्वॉल्वमेंट हो। हद ये है कि पाकिस्तान में कानून साजी हो, और कानून साजी हो खालस इस्लामिक मामलात पर, और उसके अंदर भी मकतब अहले बैत को निगलेक्ट किया जाए। निगलेक्शन का ये दौर अब काबिले कबूल नहीं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा पूरी हिकमत के साथ, प्लान के साथ और वन टू वन करते हुए लम्हा ब लम्हा अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह इस गुलामी का खात्मा करेंगे और आजादी के उस सफर का आगाज करेंगे जिसके नतीजे में ये सलाहियत जो हमें खुदा ने दिया हमारे पास, और है क्या इमाम को देने के लिए? मैं आपसे पूछता हूँ क्या है अपने मकतब को देने के लिए? क्या है एक छोटी सी चीज की राय है, वोट कम अज कम इसका भी हम सही इस्तेमाल करें जिसके नतीजे में हम अपने मकतब की इज्जत को यकीनी बना सकें। इंशाअल्लाह मैं इस महफिल में बैठा हूँ, इन दोस्तों से बैठा हूँ, ये आज की एक इब्तदाई नशिस्त थी, आज हमने अपने टीम के साथ ये बात कर ली है, ये विद इन अ वीक अपने इलाके का प्लान जो है वो हमारे लिए डिस्क्लोज करेंगे, इन्हीं असूलों की रोशनी में होगा। जहाँ कहीं भी हत्या अगर दो जगह पर आमने सामने शिया खड़े हैं, हम वहाँ पर फ्री नहीं बने, हम तशय्यों के अंदर किसी इंतजार को आगे नहीं बढ़ने देंगे, बिल्कुल ये हमारा एक प्रिंसिपल है, इस पर हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह तशय्यो की इज्जत के लिए इस सियासी सफर का आगाज भी करेंगे और सियासी तौर पर हम अपने आप को एक आजाद मिल्लत भी बनाएंगे, इंशाल्लाह उस सफर में जाएंगे। बाकी जो हमने बड़े आजाद किए हैं लॉन्ग टर्म में, मसलन पाकिस्तान में अगर मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल राइज हो जाए तो पाकिस्तान में 5 करोड़ शिया पाकिस्तान में सबसे बड़ी पावर की सूरत में बन सकते हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल राइज। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों की तरफ भी हमें आगे बढ़ना है। और फिर ये कहूँ, खुदा ने किसी मिल्लत पर ऐसा इम्तिहान नाजिल नहीं किया जिस इम्तिहान से निपटने की इस्तेदाद उसे अदा न करता, ये खुदा की सिफ्त रहमानियत से और इदारत से बरी है। बस अगर खुदा ने हमें इस मुश्किल वक्त में हम मौजूद हैं तो यकीनन खुदा ने इस मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता भी दिया है, और अगर हिकमत और तदबीर के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान में यकीनन मिल्लत तशय्यो डिसीजन मेकर होगी और टीम मेकर भी होगी। अगर इस मौजूद में कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मामला है, क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक हो तो उसके लिए सर बात करना।